एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनके विचारों ने न सिर्फ अपने समय को झकझोरा बल्कि सदियों बाद भी जिनकी गूंज सुनाई देती है।
जी हाँ,
एक ऐसा नाम जिसने पूरब और पश्चिम के बीच ज्ञान का एक मजबूत पुल बनाया, अबू अल वलीद मोहम्मद इब्न अहमद इब्न रुश्द,
जिन्हें पश्चिम अवेरोस के नाम से जानते हैं।
हाँ, अवेरोस।
जी हाँ, और उन्हें सिर्फ महान भाष्यकार या द ग्रेट कॉमेंटेटर कहना शायद उनके काम की गहराई को पूरी तरह बयान नहीं करता। वो सिर्फ मतलब अनुवादक या व्याख्याकार नहीं थे,
अच्छा,
बल्कि एक मौलिक विचारक थे जिन्होंने यूनानी दर्शन, खासकर अरस्तु को इस्लामी और फिर यूरोपीय फलसफे के लिए जिंदा कर दिया, कह सकते हैं।
हमारी आज की बातचीत का आधार दो गुजराती स्रोतों के सार हैं, इब्न रुशद महान भाष्यकार और एवरोस तर्क और श्रद्धानो सेतु। तो हमारा इरादा है इब्न रुशद के जीवन की तहों को खोलना, उनके उन विचारों को समझना जिन्होंने हंगामा खड़ा किया।
बिल्कुल।
और खास तौर पर उनकी उस जद्दोजहद को जानना जिसमें वो तर्क और आस्था के बीच एक सामंजस्य, एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे।
चलिए उस दौर की हवा को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसमें इब्न रुश्द सांस ले रहे थे। ये बात है 12वीं सदी की, अल अंदलूस यानी मुस्लिम स्पेन।
मुस्लिम स्पेन, हाँ।
उनका जन्म 1126 में कॉर्डोबा में हुआ, और कॉर्डोबा उस समय मतलब ज्ञान विज्ञान का एक जगमगाता केंद्र था।
हाँ, सुना है बहुत।
ये अलमुहाद खिलाफत का दौर था, एक ऐसा साम्राज्य जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर स्पेन तक फैला था।
कॉर्डोबा की वो तस्वीर जहन में आती है जहाँ कहते हैं मुस्लिम, यहूदी, ईसाई विद्वान वो सब साथ काम कर रहे थे, बहसें होती थीं।
हाँ बिल्कुल, अनुवाद हो रहे थे। एक तरह से ये इस्लामी स्पेन के सुनहरे दौर का आखिरी परचम था। लेकिन ये माहौल सिर्फ इल्म की रोशनी से ही नहीं भरा था, विचारों के टकराव की तपिश भी थी, है ना?
अच्छा, किस तरह का टकराव?
बिल्कुल, एक तरफ अरस्तु का फलसफा जिसे अल-फ़ाराबी और इब्न सीना जैसे विचारकों ने इस्लामी दुनिया में पेश किया था, उसकी धूम थी। लेकिन दूसरी तरफ तर्क यानी रीजन और वहीया यानी ईश्वरीय ज्ञान, उसके बीच रिश्ते को लेकर जबरदस्त बौद्धिक कश्मकश चल रही थी।
ओके।
इमाम अल-गज़ाली जैसे बहुत प्रभावशाली धर्मशास्त्री दर्शन शास्त्र को शक की निगाह से देख रहे थे, उसे इस्लामी आस्था के लिए खतरा मानते थे।
तो इब्न रुश्द इस बहस के बीचों बीच खड़े थे, उनके आसपास और कौन सी बड़ी हस्तियां थी उस वक्त, क्या माहौल था?
माहौल बहुत दिलचस्प था। एक तरफ यहूदी दार्शनिक मेमोनाइट्स थे, वो लगभग वही काम यहूदी धर्म के लिए कर रहे थे जो इब्न रुश्द इस्लाम के लिए, मतलब अरस्तु और धर्म ग्रंथों में तालमेल बिठाना।
अच्छा, पैरेलल कोशिशें चल रही थीं।
हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ अल-गज़ाली थे जिनके दर्शन विरोधी विचारों का इब्न रुश्द को सीधे तौर पर जवाब देना पड़ा। इसी दौर में मशरिक में सलादीन क्रूसेड का सामना कर रहे थे, और यूरोप में पीटर एबेलार्ड जैसे विचारक स्कोलास्टिक दर्शन की नींव रख रहे थे। विचारों का एक कह सकते हैं वैश्विक मंथन चल रहा था।
इस गहमा गहमी भरे माहौल में पले बढ़े इब्न रुश्द की अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और तालीम ने भी उनकी सोच पर गहरी छाप छोड़ी होगी। उनका परिवार तो आपने बताया काजियों का था, न्यायाधीशों का।
जी, और ये बहुत अहम बात है, उनके दादा और पिता दोनों कॉर्डोबा के मुख्य काजी रह चुके थे।
अच्छा,
तो न्याय शास्त्र की इस पारिवारिक विरासत ने उन्हें एक खास तरह की तरतीब और विश्लेषण की कह सकते हैं सलाहियत दी।
जैसे कानून की दुनिया में हर नुक्ते को परखा जाता है, हर दलील को मजबूत किया जाता है।
हाँ, तर्क की अहमियत होती है। बिल्कुल वही रवैया उनकी फलसफियाना सोच में भी झलकता है। उनकी तालीम भी जबरदस्त थी, इस्लामी कानून, खासकर मालिकी स्कूल, कलाम, तिब यानी चिकित्सा, रियाजी, फल्कियत और जाहिर फलसफा, मतलब ज्ञान का समंदर थे वो।
तो इस मजबूत बुनियाद पर उनका करियर कैसे आगे बढ़ा? उनके जीवन में वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने उनकी दिशा तय की? कुछ खास बातें।
एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो अरिस्तु और उनसे पहले के इस्लामी दार्शनिकों जैसे अल-फ़ाराबी और इब्न सीना उनके कामों की गहराई में उतरे। इसने उनके जहन को कह सकते हैं एक मकसद दिया। फिर 1169 में उनकी मुलाकात हुई अल-मुहाद खलीफा अबू याकूब यूसुफ से, خلیفہ خود فلسفے کے بڑے قدردان تھے،
اور کہتے ہیں کہ خلیفہ نے ہی انہیں ارسطو کے کاموں پر وہ مشہور بھاشیہ لکھنے کا ذمہ سونپا تھا،
ہاں، جس نے بعد میں اتہاس رچ دیا۔
بالکل یہی ہوا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا اور چنوتی بھی۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی ارسطو کے ٹیکسٹ مشکل ہیں، انہیں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔
ہاں، عام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ بالکل، اور ابن رشد نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد وہ سیویلے اور کورڈوبا میں قاضی بھی رہے، اور بعد میں مراکش میں شاہی حکیم بھی بنے۔ ان کا رتبہ کافی بلند ہو گیا تھا۔
لیکن پھر عرش سے فرش پر آنے جیسی کہانی بھی ہوئی، یہ پتن کیوں اور کیسے ہوا، یہ تھوڑا سمجھائیے۔
ہاں، یہ ان کے جیون کا ایک دکھد پہلو ہے۔ اصل میں جب خلیفہ المنصور کا دور آیا تو سیاسی ہوا بدلنے لگی۔
اچھا۔
مذہبی کٹر پنتیوں کا اثر بڑھنے لگا، اور ابن رشد کے ترک وادی وچار وہ انہیں چبھنے لگے۔ ان پر الزام لگائے گئے کہ وہ مذہب سے بھٹک گئے ہیں۔ سال 1195 میں انہیں سرعام ذلیل کیا گیا، ان کی کتابوں پر پابندی لگی، کچھ کو جلایا بھی گیا، اور انہیں کارڈوبا کے پاس لوسینا نام کی ایک چھوٹی سی جگہ پر جلا وطن کر دیا گیا۔
یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے، ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی پرانے گیان کو سہیجنے اور سمجھانے میں لگا دی، اسی کی کتابیں جلائی جا رہی ہیں۔ اتہاس کی کیسی وڈمبنا ہے یہ۔
سچ مچ یہ دکھاتا ہے کہ نئے اور ترک سنگت وچار ہمیشہ ستا اور روڑھی وادی سوچ کے لیے کتنے خطرناک مانے جاتے رہے ہیں۔ خیر، انہیں آخرکار مراکش واپس بلا تو لیا گیا،
ہاں،
لیکن اس اپمان اور نرواسن کے صدمے سے وہ شاید ابھر نہیں پائے۔ 1198 میں وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کئی لوگ ان کی موت کو اسلامک دنیا میں فلسفے کے اس سنہرے دور کے خاتمے کی طرح دیکھتے ہیں۔
ان کے جیون کے ان اتار چڑھاووں کو جاننے کے بعد چلیے اب سیدھے ان کے وچاروں کے مغز تک پہنچتے ہیں۔ ان کے کام کی سب سے بڑی پہچان تو ارسطو پر لکھے بھاشیہ ہی ہے، ہے نا؟
یقیناً، انہوں نے ارسطو کے لگ بھگ ہر موجود کام پر تین طرح کے بھاشیہ لکھے ہیں، چھوٹے، درمیانی اور تفصیلی۔
تین طرح کے کیوں؟
شاید الگ الگ پڑھنے والوں کے لیے، اور ان کا مقصد کمال کا تھا۔ وہ ارسطو کو ان نیو پلاٹونسٹ وچاروں کی پرتوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے جو صدیوں سے ان پر چڑھا دی گئی تھی۔
نیو پلاٹونسٹ، یہ کیا تھا؟
نیو پلاٹونزم ایک الگ درشن تھا جو ارسطو کے یتھارتھواد سے تھوڑا الگ ہٹ کر آتما اور ایشور پر زیادہ رہسیمے ڈھنگ سے سوچتا تھا۔ ابن رشد ارسطو کے اصل خالص وچاروں کو سامنے لانا چاہتے تھے۔
اچھا، پیوریفیکیشن ایک طرح سے۔
بالکل، اور انہی بھاشیوں کی بدولت ارسطو پشچمی یورپ میں پھر سے زندہ ہو پائے، اسی لیے انہیں وہاں دا کامنٹیٹر کہا گیا۔
دا کامنٹیٹر، ہاں، یہ ٹائٹل بہت مشہور ہے۔
جی بالکل۔
اور ان کا وہ مشہور کام تحافت التحافت، یعنی اسنگتی کے اسنگتی، یہ تو سیدھے سیدھے الغزالی کو جواب تھا۔
ہاں، یہ ایک بودھک تلوار بازی تھی، سمجھیے۔ الغزالی نے اپنی کتاب تحافت الفلاسفہ، دارشنکوں کی اسنگتی، میں فلسفے پر زوردار حملہ بولا تھا۔ ابن رشد نے تحافت التحافت میں اتنے ہی زوردار اور ترکپورن طریقے سے فلسفے کا بچاؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، فلسفہ کوئی خطرہ نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک ضروری راستہ ہے جو ایمان کے مطابق ہے۔
اچھا۔
یہ کتاب ترکواد اور ارسطو کی میٹا فزکس کی حفاظت میں ایک میل کا پتھر ہے۔
اور فصل المقال، دی ڈیسائسو ٹریٹیز، یہ تو ایک طرح کا فتویٰ تھا جس نے کہا کہ فلسفہ پڑھنا جائز ہی نہیں، ضروری بھی ہے۔
جی، یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس میں ابن رشد نے باقاعدہ شرعی دلیلیں دے کر ثابت کیا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے فلسفہ یعنی حکمت کا مطالعہ کرنا ایک مذہبی فرض ہے۔
مذہبی فرض،
یہ تو بڑی بات ہے۔
ہاں، اور اسی میں انہوں نے وہ کرانتکاری سدھانت دیا کہ اگر عقل سے ثابت ہوئی کوئی حقیقت قرآن کے لفظی معنوں سے ٹکراتی دکھے تو قرآن کے ان الفاظ کی روپکاتمک یعنی تاویلی ایلیگوریکل ویاخیا کرنی چاہیے۔
یہ بات تھوڑی اور سمجھائیں گے پلیز، روپکاتمک ویاخیا کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جنہیں سیدھے سیدھے لفظ بلفظ نہیں لینا چاہیے۔
اوکے۔
بلکہ ان کے گہرے اشاروں والے معنوں کو سمجھنا چاہیے۔ مان لیجئے قرآن میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو ظاہری طور پر ہماری سمجھ یا مان لیجئے وگیان سے میل نہیں کھاتی۔
تو ابن رشد کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن غلط ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں اس کے گہرے چھپے ہوئے مقصد کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ طریقہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
اچھا، صرف ودوانوں کے لیے؟
ہاں، بلکہ ان علماء اور دارشنکوں کے لیے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے علم کے الگ الگ ستروں کو سویکار کرنا تھا۔
یہ تو سچ مچ بہت گہرا نقطہ ہے۔ فلسفے کے علاوہ چکتسا اور قانون میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔
ہاں، وہ صرف دارشنک نہیں تھے، مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ تھے۔ उनकी मेडिकल किताब किताबल कुलियात फी तिब, जिसे लैटिन में कोलिजेट कहते हैं,
कोलिजेट,
हाँ, वो एक जबरदस्त काम था। इसमें यूनानी हकीम गैलेन से लेकर अपने वक्त तक के मुस्लिम हकीमों के इल्म को जमा किया गया था। ये किताब लैटिन में ट्रांसलेट होकर यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सदियों तक पढ़ाई जाती रही।
अरे वाह।
और कानून पर उनकी किताब बिदायत अल मुश्तहिद आज भी इस्लामिक कानून के अलग अलग स्कूलों को समझने के लिए एक अहम किताब मानी जाती है। ये उनके व्यवस्थित दिमाग का एक और सबूत है।
तो अगर हम उनके दार्शनिक योगदान का निचोड़ निकालना चाहें तो सबसे अहम बात क्या होगी, मतलब उनका कोर आइडिया?
मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी बात है तर्क और आस्था के बीच पुल बनाने की कोशिश। उनका मजबूत यकीन था कि फलसफा यानी अक्ल और मजहब यानी वही, ये दुश्मन नहीं दोस्त हैं।
दोस्त है,
हाँ, वो एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आम लोगों के लिए है जो ईमान और मिसालों से समझते हैं, दूसरा रास्ता खास लोगों यानी दार्शनिकों के लिए है जो गहरी दलीलों और सबूतों से सत्य को पाते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है।
और अरस्तु के लिए उनका जुनून, उन्हें तो सबसे कट्टर अरस्तुवादी कहा जाता है, ऐसा क्यों?
हाँ, वो अरस्तु के विचारों के लिए बेहद वफादार थे। उनकी बड़ी कोशिश यही थी कि अरस्तु के फलसफे को बाद के इजाफों से, खासकर इब्न सीना जैसे विचारकों के जरिए आए नियो प्लेटोनिस्ट असरात से पाक किया जाए।
अच्छा, वो इब्न सीना से भी असहमत थे
कुछ मामलों में। मिसाल के तौर पर आत्मा की प्रकृति या ईश्वर और दुनिया के रिश्ते जैसे मसलों पर वो इब्न सीना से अलग राय रखते थे, और अरस्तु के ज्यादा अनुभवजन्य मतलब दुनियाली तजुर्बे पर आधारित तरीके पर जोर देते थे।
लेकिन उनका एक विचार तो बहुत विवादास्पद रहा, वहदत अक्ल यानी बौद्धिक एकता का सिद्धांत। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, ये क्या था असल में?
हाँ, ये उनका सबसे पेचीदा और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल नजरिया था। इसे आसान जुबान में कहें तो उनका मानना था कि इंसानों में सोचने समझने की जो सलाहियत है, जिसे पोटेंशियल इंटेलेक्ट या अक्ल बिलकुआ कहते हैं, वो असल में एक ही सार्वभौमिक हमेशा रहने वाली कारक बुद्धि या अक्ल अलफाल का हिस्सा है।
एक ही बुद्धि सबके लिए?
हाँ, जिसे सूरज एक है और उसकी रोशनी सब पर पड़ती है, वैसे ही ये अक्ल एक है और हर इंसान उसी से रोशन होता है, उसी से सोचता है।
लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हर इंसान की अपनी अलग अमर आत्मा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल, और यही वजह थी कि ये विचार इस्लामी और ईसाई दोनों दुनियाओं में धमाका खेज साबित हुआ। अगर अक्ल एक ही है तो फिर हर इंसान के अपने आमाल का हिसाब कैसे होगा? व्यक्तिगत मोक्ष या नजात का क्या मतलब रह जाएगा?
हाँ, ये तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठाता है।
सही कहा। इसी वजह से इस सिद्धांत की बहुत शदीद मुखालिफत हुई। इसने व्यक्तिगत अमरता के पूरे तसव्वुर पर ही सवालिया निशान लगा दिया था।
अगर उनकी तुलना उनके समकालीन या उनसे पहले के विचारकों से करें तो फर्क और साफ नजर आता होगा, जैसे अल-गज़ाली से।
हाँ, अल-गज़ाली के साथ तो सीधी टक्कर थी। गजाली रूहानियत और वही को अव्वल मानते थे, इब्न रुश्द अकली दलील को।
बिल्कुल उलट।
हाँ, इब्न सीना के रुबाबले, जैसे मैंने कहा, इब्न रुश्द ज्यादा सच्ची अरस्तुवादी थे। उन्होंने इब्न सीना के दर्शन में नियो प्लेटोनिस्ट मिलावट को साफ करने की कोशिश की।
और पश्चिम में थॉमस एक्विनास पर क्या असर था?
पश्चिम में देखें तो थॉमस एक्विनास जैसे ईसाई दार्शनिक ने अरस्तु को समझने के लिए इब्न रुश्द के फ्रेमवर्क को तो बहुत अपनाया, लेकिन उनके इसी वहदत अक्ल जैसे रेडिकल विचारों को ईसाई अकीदे के मुताबिक ढालने के लिए रद्द कर दिया। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा था, लेकिन साथ ही कितना बेचैन करने वाला भी।
अब उनकी विरासत पर आते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस्लामी दुनिया में उनका असर कम रहा, लेकिन यूरोप पर उन्होंने गहरी छाप छोड़ी, ऐसा क्यों हुआ?
ये उनके साथ हुई एक और विडंबना है, कह सकते हैं। अपनी जिंदगी के आखिर में और मौत के बाद इस्लामी दुनिया में उनके खिलाफ माहौल बन गया था। उनकी किताबें हाशिए पर चली गई।
अच्छा।
सदियों तक इमाम गजाली के सूफी और कलाम वाले विचारों का ज्यादा बोलबाला रहा। इब्न रुश्द का वो तर्कवादी रास्ता वो मुख्यधारा से कट सा गया।
लेकिन पश्चिम में, वहां तो जैसे उनके विचारों ने एक नई जान फूंक दी।
बिल्कुल, जब उनके भाष्य लैटिन में तर्जुमा होकर यूरोप पहुंचे तो वहां एक बौद्धिक भूचाल सा आ गया। 13वीं सदी में पेरिस और पाडवा जैसी यूनिवर्सिटियों में अरस्तु को नए सिरे से पढ़ा जाने लगा।
हाँ।
और इसका सहरा काफी हद तक इब्न रुश्द के सर बंधा। उनकी किताबें दरसी किताबें बन गई। उनके काम ने उस दौर की स्कॉलास्टिक या मकतबी फलसफे की पूरी तहरीक को शक्ल दी।
और एक लैटिन अवेरोइज्म नाम का आंदोलन भी शुरू हुआ, जो उनसे ही प्रेरित था।
हाँ, ये क्या था? क्या ये उनके विचारों को मानता था?
हाँ, ये उनके कुछ यूरोपीय शागिर्दों का एक रेडिकल ग्रुप था। वो इब्न रुश्द के विचारों को और आगे ले गए और कभी कभी अक्ल को मजहबी अकीदों से भी ऊपर रखने लगे।
अच्छा, उन पर दोहरे सत्य का इल्जाम लगा, यानी ये मानना कि कोई बात फलसफे में सच और मजहब में झूठ हो सकती है। हालांकि इब्न रुश्द ने खुद कभी ऐसा नहीं कहा।
उन्होंने तो कहा था कि सत्य एक ही है।
हाँ बिल्कुल, वो तो सत्य को एक ही मानते थे, लेकिन चर्च ने इस इल्जाम को बुनियाद बनाकर अवेरोइज्म की शदीद मजम्मत की। फिर भी तर्क की आजादी पर इब्न रुश्द के जोर ने यूरोप में रेनेसां यानी पुनर्जागरण और फिर ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के लिए जमीन तैयार करने में अहम किरदार अदा किया।
तो आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? आज उनकी क्या रेलेवेंस है?
आज उन्हें अक्लियत पसंदी रैशनलिज्म के एक रहनुमा के तौर पर देखा जाता है, आजाद ख्याली के मुहाफिज और इस्लामी स्पेन के उस शानदार दौर की अलामत के तौर पर।
उनके कुछ मशहूर कौल भी हैं जो उनके फलसफे की आत्मा को पकड़ते हैं। एक जो बहुत मशहूर है, जहालत खौफ की तरफ ले जाती है, खौफ नफरत की तरफ और नफरत तशद्दुद यानी हिंसा की तरफ। यही वो सिलसिला है।
जी हाँ, ये बात चाहे लफ्ज ब लफ्ज उन्होंने कही हो या नहीं, पर यह उनकी सोच का आईना जरूर है कि अक्ल और समझ ही तासुब और झगड़ों का इलाज है।
और फसल मकाल से ये कौल, फलसफा मजहब का दोस्त है और उसकी बहन है।
ये कितना सुंदर है।
हाँ,
ये उनके बुनियादी पैगाम का खुलासा है। सही तरीके से समझा गया फलसफा और मजहब साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं। इसी किताब में वो आगे कहते हैं, क्योंकि सच सच की मुखालफत नहीं करता बल्कि उससे मुत्तफिक होता है और उसकी गवाही देता है। ये उनका यकीन था कि अक्ल और वही दोनों से मिलने वाला सच आखिरकार एक ही है।
और वो बात की मजहबी किताबों के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, वो कैसे कहा था उन्होंने?
हाँ, उनका कहना था दोहरे मायने लोगों की अलग अलग समझ के मुताबिक दिए गए हैं, यानी मजहबी किताबें ऐसी जुबान में बात करती हैं जिसे आम आदमी भी समझ सके और गहरे इल्म वाले भी उसमें नए मायने तलाश सकें।
जाहिर है, इतने क्रांतिकारी विचारों पर आपत्तियां और विवाद तो होने ही थे। हमने कुछ की बात की भी।
बिल्कुल, इस्लामी दुनिया में कट्टरपंथी उलमा ने उन पर कुफ्र और गुमराहियत के फतवे दिए, जिस वजह से उन्हें जलावतनी और किताबों के जलाए जाने का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा डर यही था कि उनका फलसफा वही के इख्तियार को कम कर देगा।
और यूरोप में चर्च भी उनके विचारों से चौकन्ना हो गया था, खासकर वो दोहरे सत्य वाली बात से।
हाँ, खासकर वो दोहरे सत्य वाली बात जो उनके लातिनी पैरोकारों से जुड़ी थी। चर्च को लगा कि ये अकीदे को कमजोर करने की साजिश है। और फिर वो आत्मा की अमरता वाला मसला, उनके वैदत अक्ल के सिद्धांत ने इस्लामी और ईसाई दोनों धर्मशास्त्रियों को परेशान कर दिया था, क्योंकि ये व्यक्तिगत जवाबदेही और नजात के तस्वुर को चुनौती देता था।
हाँ,
आज भी ये बहस होती है कि क्या इब्न रुश्द वाकई अक्ल और ईमान में पुल बना पाए थे, या ये दो अलग दुनियाओं को जोड़ने की एक कह सकते हैं नाकाम कोशिश थी।
चलिए कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं इब्न रुश्द के बारे में। जाते जाते कुछ फैक्ट्स, जैसे यूरोप में उन्हें सदियों तक सिर्फ द कॉमेंटेटर और अरस्तू को द फिलोसोफर कहा जाता था। ये तो उनके रुतबे को दिखाता है।
यकीनन, और वो विडंबना तो है ही कि ज्ञान बचाने वाले की किताबें जलाई गईं। एक और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक माहिर हकीम भी थे।
अच्छा, प्रैक्टिशनर भी थे।
हाँ, उन्होंने आग की रोशनी में रेटिना के रोल को समझने में अहम काम किया।
ये भी सुना है कि वो खगोल शास्त्री भी थे।
एस्ट्रोनोमर?
जी हाँ, उन्होंने सूरज पे एक धब्बा सनस्पॉट देखा था जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था, और उन्होंने टॉलमी के पुराने कायनाती मॉडल पर भी सवाल उठाए थे। सच में वो एक हामादान शख्सियत थे, एक पॉलीमैथ।
और दांते की मशहूर डिवाइन कॉमेडी में भी उनका जिक्र है। कहाँ रखा उन्हें दांते ने?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दांते ने इब्न रुश्द को जहन्नुम में नहीं बल्कि लिम्बो में रखा है।
लिम्बो? हाँ, ये वो जगह है जहाँ प्लेटो और अरस्तु जैसे नेक गैर ईसाई रहते हैं। ये दिखाता है कि मध्ययुगीन यूरोप में उनके लिए एक पेचीदा इज्जत का जज्बा था। वो थे तो गैर, लेकिन इतने बड़े आलिम कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अक्सर उन्हें इस्लामी सुनहरे दौर का आखिरी बड़ा फलसफी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद अल अंदलुस में फलसफियाना तहकीक का वो जोर नहीं रहा।
तो आखिर में इब्न रुश्द की कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं? उनकी विरासत का निचोड़ क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो?
इब्न रुश्द सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, वो एक पुल का नाम है, कदीम यूनानी इल्म और मध्ययुगीन यूरोप के बीच। اسلامی تہذیب اور مغربی علمیت کے بیچ. وہ عقل کے ایک بے خوف سپاہی تھے جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلسفیانہ سوال اٹھانا ایمان سے دوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بلند شکل ہو سکتی ہے.
لیکن ان کی وراثت میں یہ دوہراپن بھی ہے, اپنے گھر میں نظر انداز کیے گئے پر باہر دنیا بدل دی.
بالکل, یہی ان کی کہانی کو اور زیادہ مانویے اور پیچیدہ بناتا ہے. اسلامی دنیا نے ان کے ترکوادی راستے کو پوری طرح نہیں اپنایا, لیکن ان کے لیٹن ترجموں نے پشچم میں وچاروں کی ایک نئی لہر پیدا کر دی.
ہاں,
جس نے صدیوں تک وہاں کے درشن, وگیان اور دھرم شاستر کو سینچا. انہوں نے ایک مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے انسانی عقل کی خود مختاری کی وکالت کر کے انجانے میں ہی سہی یورپ کے پنرجاگرن اور گیانودے کے لیے بودھک بارود مہیا کرایا.
تو کیا آج کے دور کے لیے بھی ان میں کوئی پیغام چھپا ہے جب اتنی بحثیں ہوتی ہیں ترک اور آستھا پر؟
میرے خیال میں ہاں, وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان اور عقل کو دشمن سمجھنا ضروری نہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک تہذیب دوسری تہذیب سے سیکھ کر آگے بڑھ سکتی ہے. وہ وچاروں کی طاقت کا ثبوت ہیں جو سرحدوں اور زمانوں کو پار کر جاتے ہیں.
تو آج کی اس گہری چرچا کے بعد ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے سوچنے کے لیے. آج کی دنیا میں جہاں اکثر سائنس اور مذہب یا الگ الگ کلچر کے بیچ تناؤ دکھائی دیتا ہے, کیا ابن رشد کا عقل اور ایمان میں پل بنانے کا نظریہ, کیا وہ ہمیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟
سوچنے والی بات ہے.
کیا سچ کی تلاش واقعی الگ الگ نظریوں اور یقینوں کو ایک ساتھ لا سکتی ہے جیسا ابن رشد کا ماننا تھا؟
شاید یہی ان کا سب سے بڑا سوال تھا اور شاید آج بھی ہے.
پھر ملیں گے اگلے انک میں ایک نئی وشو وکھیات ویکتی, ایک نئی کتاب اور ایک نئے وچار کے ساتھ جو ہماری دنیا کو آکار دیتا ہے. یہ آڈیو سارانش آپ کے لیے ایکتر فاؤنڈیشن دوارا پرستت ہے.